તારીખ 2/1/1994 આત્મસંતુલનના વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 18. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
संतुलन न खो जाए इसके लिए दूसरा पैराग्राफ से थोड़ा फिर से लेंगे। अब यहां आत्मसंतुलन कुछ सर्व और अपवाद संबंधी सिद्धांत निकाल रहे हैं। यह तो निर्विवाद पक्ष है कि सर्व साधन जीवों को सम्यक एकांत रूप से दूसरा विचार ही उपाधे है। राम को किंचित मात्र भी उपाधे नहीं है, ऐसा सम्यक अभिप्राय जो कि अभिप्राय का विषय है। विकराग का परिपूर्ण उपाधे है, पूर्ण रूपेण उपाधे है और राग किंचित मात्र उपाधे नहीं है, एक सैद्धांतिक अभिप्राय का विषय है। अभिप्राय में तो ऐसा सिद्धांत ही होता है, ऐसा सम्यक अभिप्राय सभी साधकों को होते हुए भी वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने हेतु क्या हेतु है, उन अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए मोक्ष की दिशा में वो आगे बढ़ने हेतु ही जो कुछ करता है एडजस्टमेंट, तो भी इसके लिए ही करता है। ऋतु बदलता नहीं है, ऋतु बदलती नहीं, कभी न्याय बदलता हुआ दिखता है, नीति तो कभी बदलती नहीं। कि न्याय नीति का विषय
के हेतु से जो भी कार्य किया जाए वो सब सही है, हेतु से जो भी मोक्ष मार्ग के हेतु से लक्ष्य जो भी किया जाए सब सही है।
जो भी किया जाए उसमें इच्छा अनुसार किया जाए, जो किया जाए तो किसी भी स्थान में कुछ भी किया जा सकता है। अपनी भूमिका के अनुसार उसमें परमिशन लेती है, ऐसा नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने हेतु अपनी अपनी वर्तमान भूमिका अनुसार क्या लिखा है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने पुरुषार्थ को माफ कर, क्योंकि भूमिका के बाहर का पुरुषार्थ होता है जो पुरुषार्थ होता है तो भूमिका की मर्यादा में होगा, जो मुख्य को मुख्य की मर्यादा में पुरुषार्थ चलता है, स्थान में किसकी मर्यादा में है, स्थान में किस भूमिका की मर्यादा ना है, सबके साथ में किस भूमिका की मर्यादा, उसको माप करके इसका माप आना चाहिए। अगर इसका माप नहीं आता है तो साथ में वर्तमान व्यक्त शक्ति अपनी शक्ति का नाद नहीं आता है और शक्ति का माप से आगे जब जाकर करके कोई कदम उठाता है तो संतुलन नहीं बैठता
है। अपने शक्ति का ख्याल होना चाहिए,
चलता है
जी,
कूदता है, दौड़ता है, तो अपनी शक्ति से ज्यादा कर लेता है तो क्या होता है, उसको पीछे जाना पड़ता है, पीछे रह जाता है, वो गिर जाता है, कुछ नहीं कुछ हो जाता है।
तो गंभीर पॉइंट है,
तो इसलिए उसको पहले लिया है, बहुत सी बातें हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले इसकी चर्चा उठाई है। पहले को आचरण में परिणाम तो हर भूमिका में है, आचरण के लिए क्या है, क्योंकि स्थूल रूप से तो लोग ऐसे कहते हैं कि तुम जैसा जानो मानो वैसा ही आचरण करो। अगर आप अपने मान्यता के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं तो संसार में इसको कोई स्वीकार नहीं करते हैं। बोलता है कुछ आचरण करता है कुछ और, तो सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी इसको स्वीकार नहीं करता है, जबकि साधक अवस्था में मान्यता और आचरण में हमेशा हमेशा मानता है उतना तो हमारी पूर्ण विपराकता ही हमें तो पा रही है, क्योंकि आचरण में साधन दशा का पूर्ण विपराकता नहीं होती है, अधूरी विपराकता होती है। पूर्ण विपराकता हो जाने से साधक नहीं रहता, सिद्ध हो जाता।
मनुष्य जी अपने पोषाक को सही माप सकता है, एकदम सही
हाँ सही माप कर सकता है, जो सीमाप नहीं कर सकता हो तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे। जो सीमाप नहीं कर पाएगा तो अवश्य होगा, या तो शक्ति को छिपा करके कम कार्य करेगा, या तो शक्ति से कोई अधिक कार्य करने जाएगा तो गिर जाएगा,
दोनों स्टेज खराब है।
पात्र गुरु को यही अभिप्राय रहता है कि वो उसका चरण का इच्छुक ही हमेशा बना है। हालांकि उसको पात्र क्या लिया
जिया,
सबसे पात्रता का बड़ा लक्षण कौन सा है,
चरण खाने की निरंतर
जो सत्पुरुष के चरण का इच्छुक है, यही पात्रता का
लक्षण
ऐसा लक्षण है। क्योंकि इसको इतना विवेक तो आया कि मुझे कहाँ रहना, इतना तो विवेक आया, और इस विवेक के पीछे इसकी क्या विचारना है, कि उसकी सुविचारना में ये कि बात है कि मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है। अनंत काल से एक कल्याण किया है, कल्याण नहीं किया,
लेकिन
इसलिए शिव साइड गुरु चरण में निवास करना तो बचने के लिए बहुत आसान रिश्ता
है,
सरल रिश्ता है, सुगम रिश्ता है। इतना विवेक आ गया तो सुगम रास्ता है, वरना भीड़ का सीधा हो जाना चाहिए। अगर लक्ष्य में से पूर्ण मुद्रा ज्यादा भेद नहीं छूटता है तो भेद के लिए ही मोक्ष के लिए ही प्रयास करता है, और हर अपने कार्य में आत्मकल्याण का दृष्टिकोण को लागू करने का छूटता नहीं है। क्या होता है
छूटता नहीं है
कि हर कार्य में हर उदय में अपना आत्मकल्याण कैसे हो, होता है या नहीं होता है, इसकी जागृति उसको रह जाती है तो वो बच जाता है। तो इसको हरे पेज पर अवलोकना है जिसको जीवन बदलना है, उसको परिणमन बदलना है। तो परिणमन के विषय में अनजाने रहना, अंधेरे में रहना, कैसे सुसंगत होती है? बात सुसंगत नहीं होती है। वर्तमान भूमिका अनुसार प्रवर्तमान अपने पुरुषार्थ को नाप करके और बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझ करके विवेक करना पड़ेगा कि बाहर में कौन सी परिस्थिति। तो कितने दरिद्र में है, नहीं है तो कितने दरिद्र में है, कभी उनका चिंता है, कभी प्राप्त चलता है,
सब देखना है,
सबका विचार बहुत से दृष्टिकोण से इसका विवेक करना पड़ता है। अकेला ऐसा नहीं चलता है, बहुत से दृष्टिकोण से इसका विवेक करना पड़ता है। उन दोनों के बीच विवेक कर क्या हुआ? उपादान तो असली प्रवर्तमान भूमिका है, उपादान इस भूमिका में अपना पुरुषार्थ की शक्ति कितनी कम है या ज्यादा है वो है। दोनों साइड का बराबर विवेक करके, दोनों के बीच विवेक करके जिस प्रकार से आप संतुलन संधान बना रह सके, बैलेंस आउट नहीं हो जाता। ये बात एक रोटी बनाते हैं बनाती ना रोटी जी, तो भी उसको वेलन में संतुलन रखना पड़ता है। संतुलन नहीं रहे तो एक जगह मोटी, एक जगह पतली पतली ऐसी हो जाएगी। रोटी बराबर बनाने को आता नहीं, चलते चलते संतुलन रखना पड़ता है।
वो तो अभ्यास की भूमिका में है, वो अभ्यास की भूमिका में होता है। वो
संतुलन बिना अभ्यास कभी रहता
नहीं।
तो बाह्य कार्य का तो दृष्टांत है, अंतर में परिणमन में प्रयोगाभ्यास है, अपना प्रयोग का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार से आत्मसंतुलन बना रह सके उस प्रकार से बाह्य शासन की एवं द्रव्य संयमवादी की प्रवृत्ति करते हैं। सभी साधु को कैसे प्रवृत्ति करते हैं? उनकी बाह्य प्रवृत्ति में दो प्रकार है, एक शासन की प्रवृत्ति होती है, एक द्रव्य संयम की प्रवृत्ति होती है। इसमें व्रत नियम और एक बार में प्रभावना आदि का जो शासन का कार्य है, वात्सल्य की प्रभावना जो अंग है वो शासन, उस प्रवृत्ति में और अंतरंग में हमारे पूर्ण वितराग का मोक्ष का ध्येय दोनों के बीच संतुलन रहना चाहिए।
सामंजस्य
मध्यस्थता,
द्रव्य संयम भी एक शुभ राग है,
और शासन की बाह्य प्रवृत्ति भी एक शुभराग है और हमारा निर्गुण वितरागता का है, तो हमें पूर्ण वितरागता चाहिए। फिर भी हम ऐसे राग में क्यों आते हैं जिसमें शासन की प्रवृत्ति हो, जिसमें ग्रहसंयम का राग हो। तो आत्मसंतुलन इसमें नहीं रहेगा तो या तो राग में बह जाएगा या तो वितरागता की हट करके परिणाम गिर जाएगा। वितरागता होगी नहीं, हट से कोई वितरागता हो सकती नहीं है। और वैश्विक प्रवृत्ति में अपवाद रूप से रागादि भावों का परिणाम होता है, ये अपवाद है। रागादि भावों का परिणाम होना वह अपवाद है, वितरागता का परिणाम होना वो उत्सर्ग है। दोनों के बीच में आत्म संतुलन संधान रहना चाहिए।
चाहे प्रशस्त राग का हो वो भी, चाहे प्रशस्त राग का परिणाम हो वो भी।
प्रशस्त राग तो बात चलती है, शासन प्रभाव न प्रशस्त ही राग है,
इसका भी निषेध आता है।
हाँ, राग मात्र का निषेध आता है। वैसे प्रकार की उक्त प्रवृत्ति में शुद्धि की वृद्धि के मंद पुरुषार्थ वर्ष राग की मुख्यता होती दिखाई देती है। क्या होता है कि बाह्य प्रवृत्ति में तो राग की मुख्यता दिखाई पड़ती है, तो वो कैसे राग की प्रवृत्ति कैसे होती है मोक्ष मार्ग के जीवों को, ये सिद्धांत प्रवचन सार में चरणानुयोग सूचक चुनी का मैं लिया है। साधक हमेशा वितरागता के पुरुषार्थ में लगा
रहता है।
चला है कि साधक जीव वितरागता का ध्येय वाला होने से पुरुषार्थ तो वितरागता का करता है, लेकिन पुरुषार्थ के परिणाम में तीव्रता मंदता हो जाया करती है। साधक अवस्था में अकेली तीव्रता हो गए तो साधक भरत चक्रवर्ती की तरह सीधा ही शोषता को प्राप्त कर देता है, लेकिन ऐसा कोई साधक होता है, हजारों साधकों में तीव्र पुरुषार्थ वाले साधक बहुत कम होते हैं। कितने भी साधक की संख्या हो, मंद पुरुषार्थ वाले की संख्या ज्यादा होती है। आता है तीव्र पुरुषार्थ वाले की संख्या बहुत कम होती है, ज्यादा पुरुषार्थ वाले की संख्या तीव्र पुरुषार्थ वाले की संख्या बहुत कम होती है और मंद पुरुषार्थ वाले की संख्या ज्यादा होती है। तीव्र पुरुषार्थ वाले को रास्ता नहीं निकले तो बाईपास कर लेते हैं, ऐसे बलदेव ने क्या किया, उन्होंने देखा कि मुझे यहाँ से भगना है, जंगल में चला जाना है, तो वो मुझे कोई जाने देगा, अगले दरवाजे से तो नहीं जाने देगा लेकिन पिछले दरवाजे से भी जाने देंगे
नहीं।
अब क्या करना, बराबर फंस गया है तो लगता है कि गृहस्थी में बराबर में
फंस गया।
अब क्या करना, बाईपास सर्जरी ऑपरेशन करना, बाईपास सत्य हो जाए कि गृहस्थी के उदय में रहते हुए भीतर में पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थ से इतने भिन्न हो जाया करो कि जो जंगल में जाकर जो दिर्जरा न हो इससे ज्यादा आप दिर्जरा इधर हो जाए। ये बात पास बाईपास कर जाओ। 10 साल ने कर्म खत्म करके एक बहुमत गिरा सारे ने इतना काम कर लिया। आयु भी कम था समय भी कम था लेकिन पुरुषार्थ तेज था। ऐसे महात्मा मोक्ष मार्ग में भी बहुत कम हो जाए तो दूसरे जो धर्मात्मा हैं साधक है ये भी पहुंचते तो हैं देर से नहीं पहुंचते ऐसे तो नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको सुराग में कहीं न कहीं अटकना पड़ता है। तो अटकने के परिणाम शुभ भाव है प्रशस्त राग है द्रव्य संयम के होते हैं या जिनशासन की भाई प्रवृत्ति के होते हैं दो प्रकार के राग में वो अटकते 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 आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे तो बढ़ते ही है पीछे नहीं जाते आगे तो
बढ़ते ही है
पीछे कौन जाते कि जिसका संतुलन को बैठते हैं वही। तो शुद्धि का पुरुषार्थ तीव्र हो तो परिणाम में वितराग का ढोकी हो जाता है और साधक दशा में शुद्धि का पुरुषार्थ मंद होता है तो शुभराग की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से हो जाती है। और जब मंद पुरुषार्थ उस राग की प्रवृत्ति होती है तो राग की मुख्यता दूसरे को दिखाई देती है कभी तो ये राग है उनको तो अभी राग है दूसरे को राग तो स्थूल है ना और इसकी प्रवृत्ति भी बाहे में है निमित्तों के साथ इसलिए वो सबको देखने में आती है उनको ऐसा राग हुआ ऐसा राग हुआ ऐसा राग हुआ। परंतु वैसे राग के परिणाम भी उन्हें हट बिना आता है उसका अर्थ नहीं है राग करने का भी अभिप्राय नहीं है और तोड़ने का हट नहीं है क्या करने का अभिप्राय नहीं है और छोड़ने का हट नहीं होता सहज हट बिना ये राग उठता है मुझे पुरुषार्थ के कारण और उसमें अभिप्राय क्या है हे बुद्धि पूर्वक बुद्धि का अभिप्राय क्या कभी भी अनुमोदन होता नहीं है तो मेरी तो ये भूमिका है इसलिए ऐसा राग तो मुझे आवे ही आना ही चाहिए मैं ऐसा अनुमोदन कभी होता नहीं है। ये बुद्धिपूर्वक सहज होते हैं तथापि उनके अभिप्राय में उत्सर्ग की मुख्यता कभी भी नहीं छूटी तब देखिए परिणमन में दो प्रकार है एक अभिप्राय वाला परिणमन है एक वर्तमान का परिणमन है दोनों का प्रकार अलग अलग है अभिप्राय में उत्सर्ग है परिणमन अभिप्राय में उत्सर्ग है परिणमन में अपवाद है और फिर भी वो आगे बढ़ते हैं पीछे जाते हैं
ज्ञान धारा कर्म धारा नहीं
ज्ञान धारा कर्म धारा के बीच में संतुलन बिठाना पड़ेगा ऐसा अच्छी बात है आचरण में तो परिणाम में तो अगर संतुलन खो बैठे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभिप्राय में तो उत्सर्ग की मुख्यता है और परिणाम में अपवाद रूप परिणाम है। इस प्रकार धर्मात्माओं की प्रवृत्ति अपवाद मार्ग के विषय में होती है जिसमें अति सूक्ष्मता गर्भी है। ये विषय अधिक सूक्ष्म है, भीतर में उसकी व्यवस्था बिठाना विवेक से उसमें बहुत सूक्ष्म काम करता है और उसकी नीति वो है। ये पॉलिसी क्या है, रखने की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, कि नीति वो है कि आत्मकल्याण का जो प्रयोजन है, कि प्रयोजन का दृष्टिकोण, प्रयोजन का लक्ष्य छूटता नहीं है, रचना चाहिए और लक्ष्य जारी रहने से हमारा प्रयोजन का दृष्टिकोण है वो सतत कार्यान्वित रहता है। लक्ष्य के दौरान हमारा जो प्रयोजन का दृष्टिकोण है वो हमेशा हमेशा कार्यान्वित रहता है, तो संतुलन बराबर बना रहता है। ये इसकी पॉलिसी है। इतना नीति विषय की बात खोल करके नहीं रखा है, अभी थोड़ा थोड़ा
सूक्ष्म
और विचार जो चल जाता है। नीति क्या है, क्योंकि नीति है वो नहीं छोड़ने की परिस्थिति है, उसमें बांध छोड़ नहीं होती है। सिद्धांत होता है कि हमारे यहाँ एक ही नाम है, क्या
एक नाम है,
हम कभी किसी के दो भाव से एक का एक भाव लिया दूसरे का दूसरा भाव लिया ऐसा हम कभी करते
नहीं है।
एक ही नाम बोर्ड लगा देते हैं क्या
जी,
कोई नाम कमी बेसी करने के सिरपुरी में नहीं जाए,
नहीं जाए,
हाँ माथा पच्चे से बच जाए
जी।
फिर भी लंबा छोड़ा और फीलिंग होता है
जी जी,
होता है
होता
है, बहुत माल लेता है तो उनको दाम का तो दिन में तो कोई फेरफार करने वाले
नहीं है,
लेकिन कसर खा ले
खाते
के नहीं खाते
जी।
कि आपका बिल हुआ 10,50,254 रुपया, 254 हम कसर खाते हैं, पूरा जमा करेंगे, जमे करेंगे करेंगे कितने
पूरा
बिल उधार करेंगे 10,50,254, रोकड़ा आया 10,50,254 और 254 है वो आया नहीं है
जी,
तो कसर खाते में उतार देंगे
जी।
लेकिन भाव में ब्लैक बदली हो सकती
नहीं है,
तो फिर क्या है कि कोई कितना भी कहेगा कि तुम हमारा दिन बोल रहे हो, हम दो भाव करते हैं
नहीं करते,
हमारे साथ लंबी चोरी माथा पर सिंधन करो, हमारे दिन बोल
कागज लेके आओ, कागज लेके आओ,
तो फिर वो 254 वाले तो कोई जानते हैं नहीं, दिन बुक देखेंगे नीति वाला आदमी है, क्या देखेगा
नीति,
ये व्यापारी नीति वाला है
नहीं करनी,
ऐसा एडजस्टमेंट इधर भी ऐसा होता है कि नीति नहीं बदलती, परिणाम में थोड़ा राग आ जाता है, बिना आता है, करने का अभिप्राय नहीं है, और वहां जैसे 254 के लिए हट नहीं किया ऐसे नहीं आप हट करते
नहीं, नहीं। बहुत सुंदर
ऐसे बात व्यापारी को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है ना उसका
जी,
ये प्रैक्टिकल साइड का है एडजस्टमेंट, वो आचरण जो है व्यापारी का आचरण प्रैक्टिकल बहुत होता है, मुनाफा तो बहुत है उसमें, 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया मिलता है उसमें, तो
खुश रहेगा,
प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसे यहाँ भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है
जी।
अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए अकेला थियोरेटिकल बात नहीं चलता है,
प्रैक्टिकल
होना पड़ता है, क्योंकि हमारा विश्वास में मंदता आती है तो हमें संतुलन बनाना
पड़ता है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि यदि हठपूर्वक परिणाम की प्रवृत्ति करने में आए तो यानी हमको राग करना ही नहीं, हमको वितराग का चाहते हैं, राग करेंगे नहीं, तो करना ही नहीं, हट कर लेंगे होगा, ऐसे वितरागता होगी नहीं। यदि हठपूर्वक परिणाम की प्रवृत्ति करने में आए तो वहां निसंदेह रूप से द्रव्य दृष्टि विलय होकर पर्याय बुद्धि का आविर्भाव हो जाएगा। पहला प्रश्न तो ये प्रश्न प्रसिद्ध हो जाएगा, साधक होते हुए मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, परिणाम पर जोर नहीं लगाना, जोर लगाना हो तो द्रव्य दृष्टि से द्रव्य पर लगाना, द्रव्य दृष्टि के दौरान द्रव्य पर लगाना, परिणाम पर जोर लगाना नहीं कभी। परिणाम में तो राग द्वेष सब होता है, फिर भी जोर लगाने का वो विषय नहीं है। उसका एक अच्छा दृष्टांत है कि हम वो छड़ी चाकू को बाहर निकालते हैं
जी,
बाहर निकालते हैं तो पत्थर के साथ सराहन के साथ घिस करके निकालते हैं
जी,
जो घिसने का होता है तो जोर देते हैं
जी,
धार कितनी निकले उसको तलाश करने के लिए जोर दिया जाता
नहीं है,
जितना दूर जोर वहां देंगे धार घिसने के लिए, इतना जोर से अंगुली दबा दे धार तलाश करने के लिए तो अंगुली कट जाएगी
जी हाँ।
वहां वो टिक टैक है कि नहीं, इसकी टेक्निक है
जी,
धार निकलने भी चाहिए और इसका जो विधि है उस विधि से वो निकल सकती है, उसमें दूसरी गड़बड़ उठी सुनती
नहीं जाती नहीं चलती।
ऐसे परिणाम में वितरागता के धार निकलते हैं तो उसको तलाश करना है, वहां जोर देना
नहीं,
देख लेना कितने आगे बढ़े, जरूरत कितनी हुई, अपवाद कितना हुआ, उत्सव कितना हुआ, देखते जाओ। अगर जोर देना है तो द्रव्य पर जोर दे दो, द्रव्य दृष्टि का जोर लगाओ, ऐसी इसमें भी एक टैक्निक है।
200 पर भी जोर नहीं देना, दोष होते हैं तो उनको जोर नहीं देना,
दोष हो तो जोर देने का ये विषय नहीं है, हट हो जाएगी क्या सहज, इसका खेद आ ही जाएगा, जिसको दोष करने का अभिप्राय नहीं है उसको अपने दोष का खेद सहज आ ही जाएगा, लेकिन वजन जरूरत से ज्यादा दे दिया तो संतुलन
बिगड़ जाएगा।
उसका तो कोई सिद्धांत नहीं है, किसी को कैसा उदय आवे तो कितना मोड़ लेना, ड्राइविंग में कोई है लिखा है
नहीं लिखा है,
ड्राइविंग में कहां कितना मोड़ आएगा तो कोई हर मोड़ के जगह लिखा नहीं जाता
जी,
कोई सीरियस होता तो लिखते हैं कि इधर तो यू टर्न है, थोड़ा ख्याल रखना
जी,
आपको आगे जाना है तीव्र गति से, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको गति को मंद करना
चाहिए,
पड़ेगा पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यू टर्न आता है, लेकिन अनेक प्रकार के 90 डिग्री में से कितने भी 180 में से कितना भी एंगल हो सकता है, 180 सीधा लीटी है, एक डिग्री कम हो तो एंगल बनता जाता है, एंगल बनता है। अब कहां किस डिग्री का मोड़ है वो कि लिखा नहीं जाता, और स्टीयरिंग पर भी लिखा नहीं है कि कितना घुमाव तो इतना डिग्री होता है, भी तो देखते नहीं
जी आप,
गाड़ी चलाने वाले को तो नीचे का पहिया तो दिखता नहीं
जी हाँ,
और ना स्टीयरिंग पर लिखा है कि इतना घुमाव तो इतना डिग्री का एंगल होता है, इतना घुमाव तो
बहुत सुंदर।
तो फिर वो कैसे काम करेगा,
प्रैक्टिकल
ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज
होना चाहिए,
चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें काम में आता
नहीं है,
नहीं है। तो समय के अनुभव की बात है कि नहीं है, साइकिल में भी ऐसा है, संतुलन बनाए रखना पड़ता है,
एकदम लागू होता है इसका
एकदम प्रैक्टिकल वाले तो सिद्धांतिक बात तो समझेंगे, सिद्धांत तो ऐसा ही होता है ना, सिद्धांत थोड़ा बदलता है, संतुलन का सिद्धांत तो ऐसा ही रहता
है।
और कोई तीव्र गति से जाता है और ब्रेक लगा ले तो गाड़ी उल्टी
हो जाएगी,
इसी का नाम हट है, इधर इसी का नाम
हट
हट है, करने से भी पूरी दृष्टि छूट जाती है, पर्याय दृष्टि भी हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। पर्याय के कर्ता बुद्धि वो विचार जो है, पर्याय की कर्ता बुद्धि वो
विख्यात
है, उसको दृष्टि विलय होकर पर्याय बुद्धि का आविर्भाव हो जाता है, और वह मार्गच्युत होकर के अंत में अति संक्लेश परिणाम को प्राप्त हो जाता है। तो मार्ग सूचित हो गया, गया पंचात में तो अनुग में चला गया, सुख छूट गया, सम्यक में छूट गया तो सम्यक का सुख भी छूट गया, आनंद दुख आ गया, इस बात इसलिए अपवाद मार्ग पर प्रवर्त रहे ज्ञानी वास्तव में तो वितरागता की वृद्धि के आशय की पूर्ति हेतु ही प्रवर्तन करते हैं। आशय क्या है आत्मकल्याण, राग करना करने का होता है वो भी वितरागता के लिए, क्या राग भी वितरागता के लिए, राग राग के लिए नहीं, राग वितरागता के लिए। चलो दृष्टांत दिया था, कोई व्यापारी अपना दुकान बंद करना चाहता है, सब माल बेच देना चाहता है, दो तीन आइटम ऐसे रहेगी तो कोई अकेली बिकती नहीं है, वो साथ में ही बिकती ऐसे रहेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जिसके साथ वो बिक जाती है उस दो आइटम को और खरीदनी पड़ेगी, दो को दो वाले चार करके वो चार को खत्म पड़ेगा, दीजिएगा इस तरह से एडजस्टमेंट करता है, चलने में क्या ट्रैफिक बॉल है तो क्या
करेंगे, दूसरा रास्ता खुलते
हैं, कभी साइड में जाना पड़ता है, कभी रिवर्स में भी लेना पड़ता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए पीछे जाना है तो भी आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए पीछे जाना
नहीं है,
प्रैक्टिकल मार्ग। इसलिए अपवाद मार्ग पर प्रवृत्त रहे ज्ञानी वास्तव में वितरागता की वृद्धि के आशय जो है, क्या आशय है, वितरागता की वृद्धि करना, यही एकमात्र आशय है, इस आश्रम की पूर्ति के हेतु ही प्रवर्तन करते हैं, हेतु ही बदलता। इसी कारण जिनागम में मोक्ष मार्ग के सिद्धांत में उत्सर्ग और अपवाद के संदेह का स्वीकार करने में आया है। जिनागम में वो बात चली है कि उसमें भी उत्सर्ग और अपवाद की संधि करना, निश्चय और व्यवहार के संधि रखना, वो प्रकरण आ गया है। निश्चय व्यवहार कर लिया है, निश्चय व्यवहार का लिया है, उत्सर्ग उत्पाद का लिया है और ज्ञान और पुरुषार्थ का भी लिया है, सत्ता और ज्ञान का भी लिया है, उपादान और निमित्त का भी लिया है, सब लिया है। सब में कैसे संतुलन बैठा है, ये सभी मुद्दों पर कैसे संतुलन बैठा है।
उत्सर्ग माने
उत्सर्ग 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 मैंने सिद्धांत
सिद्धांत
और सिद्धांत में अपवाद होता है
जी।
इसी कारण जिनागम में मोक्ष मार्ग के सिद्धांत में मोक्ष मार्ग के सिद्धांत में मार्ग विषय की नीति है, उत्सर्ग और अपवाद की संधि संधि में संतुलन का स्वीकार करने में आया है। वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है कि चारित्र गुण क्रमशः शुद्ध होता है। श्रद्धा जैसे नहीं है प्रश्न क्या है, इसकी चर्चा क्यों आचरण के प्रकरण में करते हैं और श्रद्धा के प्रकरण में नहीं करेंगे। कि उत्सर्ग अपवाद वाला बात जो है वो आचरण का प्रकरण है, श्रद्धा का प्रकरण नहीं है, क्योंकि श्रद्धा एक साथ परिणमन करती है जबकि आचरण क्रमशः आगे बढ़ता है, एक साथ पूरा कभी किसी का नहीं होता। कितना भी तेज पुरुषार्थ हो अंतर्मुर्त तो लगेगा लगेगा और लगेगा, वो भी मुनि दशा में। मुनि दशा के पहले तो कितना भी काल साधक दशा का छोटे मात्र स्थान में लंबा हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कितना मतलब जो एक भव दो भव में मैक्सिमम आयु है, जैसे कोई शेर वस्त्रवास से देने गया तो चतुर्थ गुण स्थान में तैतीस सागर चला जाएगा, पंचम गुण स्थान में आ सकता। आपने गुण स्थान में सम्यक दर्शन होगा तो वहां भी तृप्ति सागर है, सातवें नरक में। सातवें नरक में सम्यक दर्शन होगा तो वहां भी तृप्ति सागर है। चतुर्थ गुण स्थान में चतुर्थ गुण स्थान में क्यों नहीं आया, चारित्र गुण का नियम है कि जितना हमें तीव्र रस लेकर के अपराध किया है, चाहे सर्वासिद्धि में जाने का भी अपराध किया है, क्या सर्वासिद्धि में जाने का भी अपराध किया है, तो क्या नहीं जाते, निकालता नहीं जाते, दूसरे नहीं जाते, वहां से निकल कर चरम शरीर होते सब, लेकिन है वो अपराध ही अपराध है। वो फर्स्ट क्लास जेल है,
फर्स्ट क्लास जेल
निकलने में थोड़ा जल्दी बनता, चाहते हुए भी नहीं बनता है, क्योंकि अपराध तो कर दिया तो अपराध का दंड भुगतना भी पड़ेगा। चारित्र गुण वस्तु स्थिति ऐसी है कि चारित्र गुण क्रमशः शुद्ध होता है, अक्रम शुद्ध नहीं होता श्रद्धा की तरह। अतएव साधक अवस्था में स्वस्थान का राग जाना हुआ प्रयोजनवान है जो न्यायोचित है। क्या है जिसे अमृत इंद्राचार्य महाराज ने समय साथ बारहवीं गाथा की टीका देखते हुए इस न्याय का प्रतिपादन किया है। ग्यारहवीं गाथा जो है कृष्ण भगवान की, वो एकदम प्रथा प्रधान गाथा है। ग्यारहवीं गाथा मसीदो समाधि हरि जीवो, दास को आश्रय करने वाला जीव नियम को अपने दृष्टि होता है, इसलिए व्यवहार की उपेक्षा करके निश्चय स्वरूप का आश्रय कर लो। निश्चय समाधि वही जीव उदार्थ का आश्रय करने से समय दर्शन होता है, इतना जोर आता है निश्चय का तो उसका आश्रय हो जाता है, तो समय दर्शन की प्राप्ति मनुष्य को हो जाएगा। तो इसकी टीका करते हुए अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने कहा प्रधान की मुख्यता से के समस्त व्यवहार गुजराती मस्तगड़ा व्यवहार है, समस्त व्यवहार है वो ये है अवतार है, अवतार पादे
नहीं,
हाँ समस्त व्यवहार यही करेंगे तो उसे लिखा निश्चय का अपवाद मार्ग में स्वस्थानीय जो राग की उत्पत्ति होती है वो उपाधि नहीं होती हुई भी जानने के लिए तो प्रयोजन होती है, और उस भूमिका में ऐसा राग आना वो न्यायोचित है, न्याय संपन्न है, अन्याय संपन्न
नहीं।
अगर ऐसा नहीं आएगा तो इसके इससे नीचे का स्तर का आएगा तो स्थान छूट जाएगा। राग जाने लो
प्रियोजन
न्याय संपन्न छे एवं जे जाणो ते न्याय संपन्न छे। केम न्याय संपन्न छे? छठा गुण स्थान है, मुनि को प्राण छूट जाए तो भी एक पानी के बुंद और आहार का एक कण उद्देश्य आधा करने को लेने वाला नहीं है, अगर लेता है तो इसकी भूमिका के बाहर का राग होने से मुनि की भूमिका बेस्ट रहता है, भूमिका छूट जाती है। भूमिका के राग को जाना हुआ तो
प्रयोजन,
अगर नहीं इतना भी प्रयोजन जानने का नहीं हो तो फिर किस भूमिका में किस तरह का राग होता है उसका क्या कोई मापदंड नहीं रहता, इसका कोई नियम नहीं रहता, तो नियमन नहीं रहने से संतुलन नहीं रहेगा, नुकसान छूकर तो अपने राग को नहीं समझता है तो उसकी मुनि की भूमिका ही नहीं है तो वो बात कैसे समझेगा, तो मानेगा तो मैं तो अपने दिगंबर हूं बराबर मुनि हूं, मुनि हुई आहार चौके का आहार के लिए बनाया हुआ चौके का लेता नहीं है, लेता है तो उन्हें रहता ऐसे बात, इसलिए तो हमको वंदना भी नहीं करते लोग होता है ना कि गांधी स्वामी वाला किसी को वंदन नहीं करता है, कैसे कर मुनि भी है तो कैसे कर व्यवहार में ही गड़बड़ है, निश्चय तो होगा ही कहां से हो सकता,
उसको चारित्र का दोष मान के गौण करे तो क्या हर्ज है,
आगरा से आए ये चारित्र का दोष भूमिका के की सीमा में नहीं है, क्या सीमा का उल्लंघन कर दिया बना रहता व्यवहार निश्चय की संदेह करें ऐसा नहीं,
एक सीमा तक चलता है चारित्र का दोष भी एक सीमा तक चलता है,
हाँ, सीमा तक चलता है
से आने नहीं।
त्याग नहीं है, गृहस्थी को नहीं छोड़ा है, परिवार को छोड़ दिया, नंगे पैर चलते हैं, जूते नहीं पहनते,
स्नान नहीं करते,
स्नान नहीं करते, वैसे ही अपना कोई व्यवसाय नहीं करते,
पैसे नहीं रखते,
पैसे नहीं रखते, सब त्याग के तो कुछ 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 हद में तो त्याग है इसका, नमस्कार क्यों नहीं करते? आपको इतना त्याग किया नहीं गृहस्थी, आपको व्यापार धंधा ये सब करते हैं, गृहस्थी चला दी पूरे, आपसे तो अच्छे हैं कि नहीं है बताइए, क्या नहीं है
मर्यादा का उल्लंघन है
जो गृहस्थी त्याग नहीं कर पाए, इससे कोई भी अन्य मत त्याग कर पाए, सता पर को लेकर के अन्य मत का संसार साधु संन्यासी गृहस्थी में नहीं रहते, स्वामी नारायण में, विनाशियों में और जगह, तो उसको साधक या साधु मान करके भगवान नमस्कार करना कि नहीं करना,
मर्यादा को उल्लंघन है, मर्यादा को उल्लंघन
है, धर्म बुद्धि होने
नहीं चाहिए,
यदि हम करेंगे तो हमारी मर्यादा को उल्लंघन हो जाएगा,
हमारी मर्यादा को उल्लंघन हो जाएगी, अगर हम करते हैं तो हमारी मर्यादा में रहते
नहीं
है, हमारी मर्यादा सूखती है, तो मेरा तो प्रश्न वो है कि वो त्यागी है, आप अत्यागी है, वो आपसे तो बड़े हैं
जी,
आपसे तो आगे हैं, उनको क्यों नमस्कार नहीं कर रहा?
राम जी भाई भी ऐसा प्रश्न आया था, तो उनका वो धर्म के त्यागी है, त्यागी
क्या कही
कि दूध है वो दूध है, छाछ है वो छाछ है, और कोई दूध बिगड़ जाता है तो छाछ पी सकते हैं, बिगड़ा हुआ दूध
नहीं
नहीं आता तो फेंक देना पड़ता है, आपने किसको फेंका? दूध को के छाछ को
बिगड़े हुए दूध को,
दूध को फेंका, बिगड़ा हुआ,
लेकिन बिगड़ा हुआ था,
बिगड़ा हुआ दूध से छाछ अच्छी होती है, अच्छी होती, इसलिए साधक अवस्था में स्वस्थान में अपने स्थान का राग जाना हुआ प्रयोजनवान है, और यह न्यायोचित भी है, ऐसा जो राग होना वो न्याय संपन्न है, वहां तो दृष्टांत दिया है, ऐसे दो गाथा चली है, संस्थान है निश्चय का ग्रंथ है, एक 12वीं गाथा है और एक 46वीं गाथा है, 46वीं गाथा में वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा एकांत करेंगे कि एक द्रव दूसरे द्रव को छुपा नहीं है, तो फिर जैसे हम राख को रक्षा को मसलते हैं, ऐसे एक इंद्रिय प्राणी के देह को पकड़ करके मसलने लगेंगे है? तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि निश्चित तो वो है कि एक दिन दूसरा दिन को छू सकता नहीं, हमने तो छुआ ही नहीं, वो मर गया तो मर गया, इसके कारण से मैं क्या करूं,
सुछंद हो जाए, कोई द्रव्य अपने तत्व से छोड़ता नहीं है,
छोड़ता नहीं है, तो कितनी भी हिंसा हो जाए हम क्या करें, हमने थोड़ी हिंसा किया है, इसलिए बाह्य राग में नियमन नियमन क्यों होता है, अपने अपने संस्थान के अनुसार दोष निर्दोषता का प्रकरण की गिनती है इसमें, और इसका न्याय है, आपको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारी नीति वितरकता की है।
बराबर।
न्याय को इसलिए ग्रहण करना चाहिए कि हमारी नीति वितरकता की है। जैसे किसी ने हमारा पर उपकार किया, हम कहेंगे कि उपकार कोई कर ही नहीं सकते। श्री गुरु का उपदेश मिला और श्री गुरु को ऐसा कहेंगे कि आप तो हमारा उपकार कर ही नहीं सकते, आप कुछ दे ही नहीं सकते हमको, हम दे ही नहीं सकते।
हमारे कान में सुनाई ना, हमारे कान में सुनाई ना, आप आवाज में सुनाई नहीं, ऐसी बात कर।
जहाँ जहाँ जिस भूमिका में जो जो बात व्यवहार की है, अपवाद मार्ग है वो व्यवहार है, वो अपवाद मार्ग है, फिर भी उसकी भूमिका समझनी
चाहिए,
गड़बड़ बड़ी
हो जाएगी।
संतुलन का चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट
है, वो आपके
गलतियों से।